दानियल की पुस्तक संख्या 170
आत्मा का दुर्ग भागविश्ववाणी के संदर्भ में दैवी सिंहासनारोहण और रूपांतरण की समझ।
December 7, 2014, यूक्रेनी युद्ध का आरंभ करने वाली शक्ति के रूप में रूस की पहचान करने की कुंजी गढ़ है, जो राज्य का सिर अर्थात उसकी राजधानी है। मानव मंदिर सिर और शरीर से मिलकर बना है। सिर उच्चतर स्वभाव है और शरीर निम्नतर स्वभाव है। सात काल, जिनका अंत 1894 में हुआ, तब यरूशलेम के साथ जोड़े जाने थे, जो यहूदा का सिर था। यरूशलेम के मंदिर में उस राजा का सिंहासन स्थित था जो यरूशलेम का सिर है, और यरूशलेम यहूदा का सिर था। मानवता के साथ देवत्व का संयोग, जो 144,000 की मर बंदी का प्रतिनिधित्व करता है, मसीह का मन प्राप्त करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मन उच्चतर स्वभाव है और इसलिए वही सिर है। जब वे, जिनका प्रतिनिधित्व दानियल करता है, उस स्त्रीलिंगी कारणकारी दर्शन को देखते हैं जो उन्हें मसीह के स्वरूप में बदल देता है, तो वे मसीह का मन, जो दूसरे आदम है और आत्मिक है, प्राप्त कर चुके होते हैं। उस समय उनका वास्तविक देहधर्मी मन, जो उन्हें पहले आदम के पतित हो जाने और अपनी सृष्टि के क्रम को उलट देने के बाद उससे विरासत में मिला था, क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने वाला वो देहधर्मी मन, जो उन्हें जन्म के समय बिना अपने किसी चुनाव के मिला था, मसीह के मन से बदल दिया जाता है, जिसे वे अपने स्वयं के चुनाव से ग्रहण करते हैं और जो परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति पूर्णतः आज्ञाकारी है। तब उनका नया मन और मसीह का मन एक ही मन हो जाते हैं और दोनों स्वर्गीय स्थानों में सिंहासन पर साथ साथ वास करते हैं। मंदिर के भीतर एक स्थान है जहां परमेश्वर का सिंहासन स्थित है, और मनुष्यों, जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, के लिए उसी मंदिर में एक विशिष्ट स्थान है जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बनाया गया है। वो स्थान उनकी निम्न प्रकृति में नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व उत्तरी राज्य करता है। वो उस स्थान में है जिसका प्रतिनिधित्व दक्षिणी राज्य करता है, जहां परमेश्वर ने अपना नाम रखना चुना, जो उनका चरित्र है। वो स्थान यरूशलेम में है, पर यहूदा की राजधानी होने के नाते यरूशलेम मुख है और राजधानी का मुखिया राजा है, और यरूशलेम को राजधानी के रूप में चुना गया, पर साथ ही इसे वो स्थान भी चुना गया जहां परमेश्वर अपना मंदिर स्थापित करेंगे। फिर अपने मंदिर में उन्होंने अपना सिंहासन रखा। दक्षिणी राज्य मनुष्य की उच्च प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, पर उसमें राजा के लिए एक विशेष सिंहासन कक्ष भी है। सिस्टर व्हाइट उस स्थान को आत्मा का सिटेडल कहती हैं। परिभाषा के अनुसार सिटेडल एक दुर्ग है।
संपूर्ण हृदय परमेश्वर को देना चाहिए, अन्यथा परमेश्वर का सत्य जीवन और चरित्र पर पवित्रीकरण का प्रभाव नहीं डाल पाएगा। परंतु ये एक दुखद तथ्य है कि बहुत से लोग जो मसीह का नाम लेने का दावा करते हैं, उन्होंने सरलता से अपना हृदय कभी उसे नहीं दिया। उन्होंने मसीही विश्वास की मांगों के प्रति पूरे समर्पण से उपजने वाले टूटन और पश्चाताप का अनुभव कभी नहीं किया, और परिणाम ये है कि सत्य की रूपांतरित करने वाली शक्ति उनके जीवन में नहीं है। मसीह के प्रेम का गहरा, मन को कोमल करने वाला प्रभाव जीवन और चरित्र में प्रकट नहीं होता। परंतु यदि अधीन चरवाहे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए होते और झुंड के प्रधान चरवाहे के साथ सहकार्य करने के लिए परमेश्वर के लिए जी रहे होते, तो परमेश्वर के झुंड का पालन पोषण करने का कैसा महान कार्य किया जा सकता था। मसीह मनुष्यों को वैसे ही काम करने के लिए बुलाते हैं जैसे उन्होंने किया। सत्य की शक्ति के विषय में उसे चर्चाओं में हमारी संतिनता या शक्ति धर्मनप्रायणता में दिखाई देने वाली अधिक गहरी, अधिक सशक्त और अधिक प्रेरक गवाही की आवश्यकता है। उद्धारकर्ता का प्रेम जब आत्मा में वास करता है, तो वो इस बात में स्पष्ट परिवर्तन लाता है कि कार्यकर्ता नाश हो रहे लोगों की आत्माओं के लिए किस प्रकार परिश्रम करते हैं। जब सत्य आत्मा के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, तो मसीह हृदय में सिंहासन आसीन होता है, और तब मनुष्य ये कह सकता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, तो भी मैं जीवित हूँ। अब मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन मैं अब शरीर में जीता हूँ उसे मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीता हूँ जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। रिव्यू एंड हेरल्ड 9 अक्टूबर 1891।
आत्मा का दुर्ग वह स्थान है जहाँ मसीह विराजमान है। मसीह का सिंहासनारोहण तब संपन्न होता है जब देह क्रूस पर चढ़ाई जाती है, और पौलुस की परिभाषा के अनुसार देह निम्नतर प्रकृति है और वही उत्तरी राज्य है। यही कारण है कि उत्तरी राज्य की भविष्यवाणी केवल उस 70-98 तक ही पहुंची। निम्नतर प्रकृति को दिव्यता के साथ संयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरे आगमन पर पलक झपकते ही उसका परिवर्तन होना आवश्यक है। दक्षिणी राज्य जिसमें सिर था जो यरूशलेम था और सिर था जो पवित्र स्थान था 1844 तक पहुंचा, क्योंकि वह उस उच्चतर प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता था जो देह को क्रूस पर चढ़ाने का चुनाव कर सकती थी और विश्वास के द्वारा परम पवित्र स्थान के दुर्ग में प्रवेश कर सकती थी और मसीह के साथ सिंहासन पर बैठ सकती थी। वह स्थान जहां यह संयोग और वह सिंहासनारोहण घटित होता है मानवीय मंदिर के दुर्ग में है। अध्याय 11 का पद 10 सिर को गढ़ के रूप में परिभाषित करता है, परंतु वह सत्य केवल यशायाह की साक्षी से ही स्थापित होता है जो ये अपेक्षा करती है कि गढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य को उसके बाह्य और आंतरिक प्रयोगों में समझा जाए।
परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन होना चाहिए। मैं जीवन की रोटी हूँ, मसीह ने कहा, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। संसार शुद्ध निष्कलुष सत्य के अभाव में नष्ट हो रहा है। मसीह ही सत्य हैं, उनके वचन सत्य हैं और उनका अर्थ सतह पर दिखाई देने से कहीं अधिक गहरा है और उनकी बिना आडंबर की बाहरी दिखावट से कहीं बढ़कर उनका मूल्य है। पवित्र आत्मा से जागृत मन इन वचनों का मूल्य पहचाएंगे। जब हमारी आंखें पवित्र नेत्र लेप से अभिषिक्त होंगी तब हम सत्य के अनमोल रत्नों को पहचान सकेंगे, चाहे वे सतह के नीचे ही क्यों न दबे हों। सत्य सुकुमार परिष्कृत और उन्नत है। जब ये चरित्र को ढालता है तो आत्मा उसके दैवी प्रभाव के अधीन विकसित होती है। प्रतिदिन सत्य को हृदय में ग्रहण किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम मसीह के वचनों को ग्रहण करते हैं जिन्हें वो आत्मा और जीवन कहते हैं। सत्य का स्वीकार प्रत्येक ग्रहण करने वाले को परमेश्वर की संतान स्वर्ग का वारिस बना देगा। हृदय में संजोया गया सत्य ठंडा मृत अक्षर नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है। सत्य पवित्र और दिव्य है। मसीह के सदृश चरित्र के निर्माण में ये किसी भी अन्य बात से अधिक दृढ़ और शक्तिशाली है। उसमें आनंद की परिपूर्णता है। जब सत्य हृदय में संजोया जाता है तब किसी भी मनुष्य के प्रेम पर मसीह के प्रेम को प्राथमिकता दी जाती है। यही मसीही धर्म है। ये आत्मा में परमेश्वर का प्रेम है। इस प्रकार शुद्ध निष्कलुष सत्य अस्तित्व के दुर्ग में विराजमान हो जाता है। ये वचन पूरे होते हैं, मैं तुम्हें एक नया हृदय भी दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा डालूंगा। सत्य के जीवनदायी प्रभाव के अधीन जो जीता और कार्य करता है उसके जीवन में उदात्तता होती है। रिव्यू एंड हेरल्ड 14 फरवरी 1899।
दानियल अध्याय 11 में भविष्यद्वाणी पूर्ण इतिहास का वो दर्शन पद 2 से आरंभ होता है और छठा तथा सबसे धनवान राष्ट्रपति पद 11 से 15 वर्णित सिर के साथ मेल खाता है जो रूस है। उस इतिहास में छठा राष्ट्रपति 7 में से वही 8वां बन जाएगा और वो उस समय राज्य करेगा जब संयुक्त राज्य अमेरिका में कलीसिया और राज्य एक हो जाएंगे। और पद 16 में शीघ्र आने वाली रविवार व्यवस्था पर अपनी अपवित्र व्यभिचारपूर्ण संधि को पूर्ण करेंगे। जो ध्वज तब ऊंचा उठाया जाना है वो निराश होगा और 3.5 दिनों की अवधि तक मृत रहेगा, जो दानियल अध्याय 10 में 21 दिन है। दानियल के लिए शोक के 21 दिनों के समापन पर, जो 2 गवाहों के लिए सड़क पर मृत्यु के 3.5 दिनों के निष्कर्ष के समान है, जो खेहिदकेल की घाटी में है, जो मृतम तो सूखी हड्डियां है, वहां एक भविष्यद्वाणी संदेश है जो मृतकों को फिर से जीवित कर देता है। उस प्रक्रिया को दानियल अध्याय 10 में 3 चरणों द्वारा दर्शाया गया है।
पहले महीने के 24वें दिन जब मैं उस बड़ी नदी के किनारे था जो हिद्देकेल है, तब मैंने अपनी आंखें उठाई और देखा, और देखो सन का वस्त्र पहने एक पुरुष था जिसकी कमर ऊफाज के उत्तम सोने की कमरबंद से बंधी हुई थी। उसका शरीर भी बेरील के समान था और उसका मुख बिजली के स्वरूप जैसा और उसकी आंखें आग के दीपकों के समान और उसकी भुजाएं और उसके पांव चमकते पीतल के रंग के समान और उसके वचनों की ध्वनि बहुतों की ध्वनि के समान थी। और मैं दानियेल अकेला ही उस दर्शन को देखता रहा, क्योंकि जो पुरुष मेरे साथ थे उन्होंने वो दर्शन न देखा, परंतु उन पर बड़ा भय और कांपना छा गया, सो वे भागकर छिप गए। इसलिए मैं अकेला रह गया और इस बड़े दर्शन को देखा, और मुझमें कोई शक्ति न रही, क्योंकि मेरा रूप रंग बिगड़ गया था और मुझमें बल शेष न रहा। तो भी मैंने उसके वचनों की आवाज़ सुनी, और जब मैंने उसके वचनों की आवाज़ सुनी तब वह मुख के बल भूमि की ओर होकर गहरी नींद में पड़ गया। और देखो एक हाथ ने मुझे छू लिया जिसने मुझे घुटनों के बल और हथेलियों के बल टिका दिया, और उसने मुझसे कहा, हे दानियेल बड़े प्रिय पुरुष, वे बातें समझ जो मैं तुझसे कहता हूँ और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने ये वचन मुझसे कहा तब मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, मत डर हे दानियेल, क्योंकि जिस दिन से तू समझने का निश्चय करके अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर रहा था उसी दिन से तेरे वचन सुने गए हैं, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। परंतु पारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा सामना किया, परंतु देख प्रधान सरदारों में से एक मीकाएल मेरी सहायता करने के आया, और मैं वहां पारस के राजाओं के साथ ठहरा रहा। अब मैं आया हूं ताकि तुझे समझाऊं कि अंत के दिनों में तेरी प्रजा पर क्या बीतेगा, क्योंकि ये दर्शन अभी भी कई दिनों के लिए है। दानियेल 10:4-14।
दानियेल 21 दिनों के शोक के अंत में है जब वो मसीह का दर्शन प्राप्त करता है और मसीह के वचन सुनता है। परमेश्वर के दृश्य और उच्चारित वचन के इस दर्शन से दो वर्गों का पृथक्करण उत्पन्न होता है, और दानियेल सड़क पर मृत था क्योंकि वो गहरी नींद में था।
यीशु ने ये बातें कहकर उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो रहा है, पर मैं उसे नींद से जगाने के लिए जा रहा हूं। तब उसके चेलों ने कहा, हे प्रभु, यदि वो सो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। परंतु यीशु उसकी मृत्यु के विषय में कह रहा था, पर वे समझे कि वो नींद लेकर विश्राम करने के बारे में कह रहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कहा, लाजर मर गया है। यूहन्ना 11:14।
तब दानियेल को पहली बार गब्रियल ने स्पर्श किया, जो उसे उस राजनीतिक संघर्ष के बारे में बताता है जो दानियेल के मृत सोया हुआ रहने के दौरान चल रहा था, और ये कि अब वो उस दर्शन की व्याख्या देने जा रहा है जिसने अभी अभी दानियेल को मसीह की छवि में रूपांतरित कर दिया था। फिर उसे दूसरी बार स्वयं मसीह स्पर्श करेंगे।
और जब उसने मुझसे ऐसी बातें कहीं तो मैंने अपना मुख भूमि की ओर झुका लिया और मैं निःशब्द हो गया, और देखो मनुष्यों के पुत्रों के समान एक ने मेरे होठों को छुआ। तब मैंने अपना मुंह खोला और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, हे मेरे स्वामी, इस दर्शन के कारण मेरी पीड़ाएं मुझ पर आ पड़ी है और मुझ में कोई शक्ति नहीं रह गई है, क्योंकि इस मेरे स्वामी का दास इस मेरे स्वामी से कैसे बात कर सकता है, क्योंकि मेरे विषय में तुरंत ही मुझ में कोई शक्ति नहीं रही और मेरे भीतर श्वास भी नहीं बची। दानियेल 10:15-3।
ये 37वें अध्याय में यहेजकेल की पहली भविष्यवाणी के समानांतर है, क्योंकि घाटी में पड़ी मृत हड्डियों को सुनाने के लिए जो दो भविष्यवाणियां यहेजकेल को कही गई थीं, उनमें पहली से देहें तो बनती हैं पर उनमें तब श्वास नहीं होता, नहीं उनमें किसी पराक्रमी सेना का सामर्थ्य होता है। ये यहेजकेल की दूसरी भविष्यवाणी है जिसमें वे देहें चारों पवनों से श्वास पाती हैं और बलवान सेना की तरह खड़ी हो जाती है, और दानियेल के दूसरे स्पर्श पर मुझमें कोई शक्ति न रह गई, न मुझमें श्वास ही बची। तब दानियेल को फिर से कुल मिलाकर तीसरी बार और गैब्रियल द्वारा दूसरी बार स्पर्श किया जाता है।
तब फिर एक जो मनुष्य का सा रूप रखता था आकर मुझे छू गया, और उसने मुझे बल दिया और कहा, हे अति प्रिय मनुष्य, मत डर, तेरा कुशल हो, बलवंत हो, हाँ बलवंत हो। और जब उसने मुझसे कहा तब मैं बल पाया, और मैंने कहा मेरे प्रभु बोले, क्योंकि तूने मुझे बल दिया है। दानियेल 10:18-19।
दानियेल का तीसरा स्पर्श यहेजकेल की दूसरी भविष्यवाणी है, जो शरीरों को उनके पैरों पर खड़ा कर देती है, एक शक्तिशाली सेना के समान। उसकी भविष्यवाणी उन लोगों को संबोधित है जो ये पहचानते हैं कि वे मृत हैं, क्योंकि वे शोक में थे, जैसा कि दानियेल भी था।
तब उसने मुझसे कहा, वायु से भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर हे मनुष्य पुसे, और वायु से कह, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, चारों पवनों से आ हे श्वास, और इन घात किए हुए पर फूंक कि वे जीवित हों। तब मैंने जैसा उसने मुझे आज्ञा दी वैसी ही भविष्यवाणी की, और श्वास उनमें आ गया और वे जीवित हुए और अपने पांव पर खड़े हो गए, एक अत्यंत बड़ी सेना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य पुत्र, ये हड्डियां सारे इसराइल का घराना है। देख, वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा खो गई है, हम सर्वथा कट गए हैं। यहेजकेल 37 नगराप।
प्रभु यहेजकेल को भविष्यवाणी करने की आज्ञा देते हैं, और वो उन्हें बताता है कि इसराइल के घराने की गवाही ये है कि वे मर चुके हैं, आशा के बिना हैं और कट गए हैं। वे शोक कर रहे हैं, जैसा कि दानियेल भी शोक कर रहा था, क्योंकि 18 जुलाई 2020 की असफल भविष्यवाणी से वे निराश हैं, और उसी अवस्था में यहेजकेल को भविष्यवाणी करने को कहा जाता है।
इसलिए तू भविष्यवाणी कर और उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो हे मेरे लोगो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हें तुम्हारी कब्रों से बाहर निकालूंगा और तुम्हें इसराइल के देश में ले आऊंगा। और जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा हे मेरे लोगो, और तुम्हें तुम्हारी कब्रों से बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं, और मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारे अपने देश में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैंने, यहोवा ने ये कहा है और इसे पूरा किया है, यहोवा की ये वाणी है। यहेजकेल 47:12।
प्रभु जो प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल हैं, उनकी कब्रें खोलते हैं, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के 2 साक्षी तब पुनर्जीवित किए जाते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा दी जाती है और वे खड़े हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहेजकेल की दूसरी भविष्यवाणी में, जब उन्हें उनकी कब्रों से बाहर लाया जाता है, तब जो खड़े होते हैं उन्हें पवित्र आत्मा दी जाती है।
और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई, और वे अपने पांवों पर खड़े हो गए, और जिन लोगों ने उन्हें देखा था उन पर बड़ा भय छा गया। प्रकाशित वाक्य 11:11।
उन दो गवाहों को मूसा और एलिया के रूप में दर्शाया गया है, और मूसा को प्रधान स्वर्गदूत की आवाज से भी पुनर्जीवित किया गया था।
फिर भी महादूत मूंकायल ने, जब उसने शैतान के साथ मूसा के शरीर के विषय में विवाद किया, तो उसके विरुद्ध निंदात्मक दोषारोपण करने का साहस नहीं किया, पर कहा, प्रभु तुझे धिक्कारे। यहूदा 1:9।
मीकाएल राजकुमार और महादूत वही है जिसने दानियेल के 10वें अध्याय में आकर गब्रियेल की सहायता की, और पुरुषों और स्त्रियों को जीवन के लिए बुलाने वाली आवाज उसी की है।
क्योंकि स्वयं प्रभु आदेश की पुकार, प्रधान स्वर्गदूत की वाणी और परमेश्वर की तुरही के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16।
दानियेल के 3 स्पर्श तृतीय स्वर्गदूत के लौदिकिया आंदोलन से तृतीय स्वर्गदूत के फिलाडेल्फिया आंदोलन में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दानियेल 10 में वो दर्शन जो लौदिकिया की छवि से फिलाडेल्फिया की छवि तक इस संक्रमण को संपन्न करता है, उस भविष्यद्वाणीपूर्ण इतिहास के द्वारा निरूपित है जो अध्याय 11 में प्रस्तुत किया गया है। उस दर्शन को यहेजकेल तृतीय हाय के इस्लाम के दर्शन के रूप में निरूपित करता है। 2014 में रूस ने दूसरा प्रॉक्सी युद्ध आरंभ किया। 2015 में सबसे धनी राष्ट्रपति ने 6ठा राष्ट्रपति बनने के अपने प्रयास आरंभ किए। 2000 इकोनॉमी में उस राष्ट्रपति जो रिपब्लिकन सीन का प्रतिनिधि था, का वोक नास्तिक पशु जो अथा कुंड से है द्वारा वध कर दिया गया, और उसी वर्ष
लाओदिकिया के प्रोटेस्टेंट सिंह का भी वध हुआ। 2023 में दोनों सिंह फिर से जीवित हो उठे। दोनों ने उस आठवें में, जो सात में से है, अपनी रूपांतरण की शुरुआत की। एक संयुक्त राज्य में कलीसिया और राज्य के एकीकरण के साथ पशु की राजनीतिक प्रतिमा में रूपांतरित हो रहा है, और दूसरा सींध लाओदिकिया की प्रतिमा से मसीह की प्रतिमा में रूपांतरित हो रहा है। शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय दोनों को ऊंचा किया जाएगा। एक सिकंदर महान बनेगा, 10 राजाओं का प्रमुख राजा, जो अपना सातवां राज्य रोम की वेश्या को देते हैं, और दूसरा एक पताका के रूप में ऊंचा उठाया जाएगा। इन दोनों परिवर्तनों को उत्पन्न करने वाला दर्शन वो इतिहास है जो 11 सितंबर 2001 और रविवार के कानून के बीच उद्घाटित होता है। दानियल अध्याय 11 का पद 11 विशेष रूप से इस संदर्भ में चिन्हित किया गया है कि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो स्थापित नहीं किए जाओगे। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
बाइबल के नियम दैनिक जीवन के मार्गदर्शक होने चाहिए। मसीह का क्रूस वह विषय होना चाहिए जो उन पाठों को उजागर करे जिन्हें हमें सीखना और आचरण में लाना है। सभी अध्ययन में मसीह को शामिल किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी परमेश्वर का ज्ञान ग्रहण कर सकें और अपने चरित्र में उन्हें प्रतिबिंबित कर सकें। उनकी श्रेष्ठता हमारा अध्ययन विषय इस समय में भी और अनंत काल में भी होना चाहिए। पुराने और नए नियम में मसीह द्वारा कही गई परमेश्वर की वाणी स्वर्ग से उतरी रोटी है, परंतु जो कुछ विज्ञान कहलाता है उसका बहुत सा भाग मानवीय आविष्कार के व्यंजनों के समान मिलावटी भोजन है। वह सच्चा मन्ना नहीं है। परमेश्वर के वचन में ऐसी बुद्धि मिलती है जो निर्विवाद और अक्षय है, ऐसी बुद्धि जिसका उद्गम सीमित मन में नहीं बल्कि अनंत मन में है। परंतु जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट किया है उसका बहुत सा भाग मनुष्यों के लिए अस्पष्ट है, क्योंकि सत्य के रतन मानवीय बुद्धि और परंपरा के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बहुतों के लिए वचन के खजाने छिपे ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्ची लगन और धैर्य के साथ तब तक खोज ही नहीं की जब तक कि स्वर्णिम सिद्धांत समझ में न आ गए। वचन की खोज इस उद्देश्य से करनी चाहिए कि उसे ग्रहण करने वाले शुद्ध होकर तैयार किए जाएं, ताकि वे राज परिवार के सदस्य, स्वर्गीय राजा की संतान बन सकें। परमेश्वर के वचन का अध्ययन उन पुस्तकों के अध्ययन का स्थान लेना चाहिए जिन्होंने मनों को रहस्यवाद में और सत्य से दूर ले जाया है। उसके जीवन सिद्धांत जब हमारे जीवन में पिरोए जाते हैं तो परीक्षाओं और प्रलोभनों में हमारे लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। उसकी दैवी शिक्षा ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। जब प्रत्येक आत्मा पर परीक्षा आएगी तो धर्म त्याग होंगे, कुछ लोग विश्वासघाती सिद्ध होंगे, उतावले घमंडी और आत्मनिर्भर और सत्य से मुंह मोड़कर अपने विश्वास का जहाज डुबो देंगे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के अनुसार नहीं जिए, उन्होंने गहराई तक खोदकर अपनी नींव पक्की नहीं की। जब प्रभु के वचन अपने चुने हुए दूतों के माध्यम से उनके पास लाए जाते हैं तो वे बड़बड़ाते हैं और सोचते हैं कि मार्ग बहुत संकीर्ण कर दिया गया है। यूहन्ना के 6 अध्याय में हम कुछ उन लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्हें मसीह के शिष्य समझा जाता था, परंतु जब उनके सामने स्पष्ट सत्य प्रस्तुत किया गया तो वे अप्रसन्न हुए और उसके साथ फिर न चले। इसी प्रकार ये सतही विद्यार्थी भी मसीह से विमुख हो जाएंगे। टेस्टिमोनीज खंड 6 हमसो 35।